नवा अध्याय के पांचवा श्लोक। न च मस्तानि भूतानि पश्यवे योगमेश्वरम् भूत भिन्न च भूतस्तो ममात्मा भूत भावनः। परम पूज्य प्रातस्मरणीय प्रेमपुरी आश्रम के अधिष्ठाता पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन। आप सभी भक्तिमती माताएं भक्तजन, वेदांत में जहां ब्रह्म तत्व का निरूपण किया गया है तो वेदांत जगत में इस बात को सिद्ध करते हैं कि जो ब्रह्म है ना वो असंग है, और असंग होने से इंद्रियातीत है। ये अर्थ जो इंद्रियों से अतीत है, मन वाणी इंद्रियों से परे जो तत्व है, वो जो आत्मा है, वो जो राम है, उसको जो है ना इंद्रियातीत कहा गया है। और इंद्रियों से अतीत होने के कारण असंग भी कहा गया, असंगोयम पुरुषः ऐसे कहा जाता है, आप असंग हैं। प्रसन्नता यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज में श्री रघुनंदनस्य में सदास्तुषा मंजुल मंगल प्रदाः। ये रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अरण्य कांड की मंगलाचरण की। प्रसन्नता यान गताभिषेकद तथा न ममले वनवास दुखद मुखाम्बुज मे श्री रघुनंदनस्य मे सदा मंजुल मंगल प्रदाः। पिताजी ने कहा कि वनवास जाना है तो अच्छी बात है, भगवान ने कहा कि अच्छी बात है, केकई जी ने कहा यानी पिताजी ने कहा, मां ने कहा तो पिताजी ने भी कहा, क्योंकि यहां पर मौनम स्वीकार ज लक्षण, माता बोल दिया और राजा दशरथ जी मौन है तो पिताजी की भी आज्ञा है। प्रसन्नता या न गताभिषेकतः, आज राजा होने वाले हैं तो भगवान इतना प्रसन्न नहीं है, जैसे थे वैसे हैं। और सुबह की बेला में, शाम की बेला में राजा होने का संकेत मिला है, और संध्याकालीन में राम जी को दूसरे दिन वनवास जाना है। प्रसन्नता या न गताभिषेकत तथा न ममले वनवास दुखत, वनवास गए हैं तब भी वही है, राजा बनने जा रहे हैं तब भी वही है, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र राजा होने पर कोई सुख की अनुभूति नहीं कर रहे हैं और वनवास में दुख की अनुभूति नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप असंग हैं। असंगोयम पुरुषः, ये उपनिषद में बताया कि ये जो ब्रह्म आत्मा है, ये राम कृष्ण शिव है, असंग है ये। इसलिए उस बात को जो वेदांत में असंग कहा गया है तो कृष्ण कहते हैं मैं भी असंग हूं। न च मस्तानि भूतानि पश्यमे योगमेश्वरम, मैं योगम ऐश्वरम मस्तानि भूतानि पश्य। पश्य का अर्थ होता है देखो, हिंदी में पश्य का अर्थ है देखो। ये दृश्य धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है, दृश्य धातु का लोट लकार है, लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन है पश्य, पश्य पश्यतु पश्यतात, यही इसका अर्थ है पश्यत। इसलिए यहां दृश्य धातु के स्थान पर पश्य आदेश हो जाता है, और व्याकरण में ये पश्य शब्द का अर्थ होता है देखो। सारथी रथी को आदेश देता है, इसकी महिमा यही है। यहां सारथी कृष्ण भगवान हैं, अर्जुन रथी हैं, रथी जो अर्जुन है उसको सारथी उपदेश देता है, आदेश देते हैं। ये हमारे भारतीय वैदिक सनातन धर्म की एक बहुत बड़ा विशेषता है कि सारथी ही ज्ञान दे रहा है। देखो संसार में गुरु ज्ञान देते हैं, लेकिन यहां सारथी है। बुद्धि तुम सारथी विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च, आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव तु। आत्मा रथी है आपके, और बुद्धि नाम के जो है ना ये सारथी है, और मन जो है ना लगाम है, और इंद्रियां घोड़े हैं। आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरम रथमेव तु। शरीर एक रथ है, शरीर में चक्के होते हैं, ऐसे शरीर में नौ चक्का है। नवद्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्। तो भगवान कहते हैं न च मस्तानि भूतानि पश्चमे, संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं ऐसे नहीं है। लगता है कि संपूर्ण प्राणी जो है ना मुझ में स्थित है। बम्बई वाले सोचते हैं कि जो आकाश है ना बिल्कुल सामने है, लेकिन केदारनाथ हिमालय गए तो आकाश और ज्यादा है। गोमुख गए, गंगोत्री गए तो ऐसे लग रहा है कि बादल सटा हुआ है, आकाश सामने है। जहां भी गए ऐसे लग रहा है कि सब्जी रखने का जो मंडी होता है ना धान चावल का, ऐसे लगता है बिल्कुल। लेकिन आकाश आपके पास है, लेकिन आकाश क्या है, असंग है, आपके संग में नहीं है। ऐसे जो आत्मा ब्रह्म ईश्वर है ना वो असंग है। बोले आप असंग क्यों है, तो कहते हैं कि मैं किसी के सुख को और दुख को ग्रहण नहीं करता। ईश्वर किसी के सुख को नहीं लेता, किसी के दुख को नहीं लेता। नादते कस्यचित् पापम न चैवम सुकृतम विभुः, अज्ञानेन वृतम ज्ञानम तेन मुह्यं दिजन्तव। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं किसी के पाप और पुण्य को नहीं लेता, सुख और दुख को नहीं लेता। इसलिए पश्चमे योगम ऐश्वरम, यही मेरी योग है, यही मेरी शक्ति है। ईश्वर की शक्ति यही है कि ये संसार जो है ना मेरे अंदर में नहीं है। है तो संसार में ईश्वर व्यापक है। भूत भृत च, संपूर्ण जगत को मैं पालन करता हूं। न च भूतस्तो ममात्मा भूत भावन, लेकिन संपूर्ण भूत प्राणी जो है ना मेरे अंदर तो है, लेकिन मैं जो है ना संसर्ग नहीं हूं। मेरे से किसी का संबंध नहीं है, निर्लिप्त भाव से मैं रहता हूं। गीता जी में ये श्लोक की व्याख्या, नादते कस्यचित् पापम न चैवम सुकृतम विभुः, अज्ञानेन वृतम ज्ञानम तेन मुह्यं दिजन्तवः। ऐसे भगवान ने गीता जी के चौथा अध्याय पर बताया। ईश्वर किसी के पाप को ग्रहण नहीं करता और किसी के पुण्य को नहीं लेता। आपका मन पवित्र है, सत्संग सुनने पर लगता है कि मेरा हृदय पवित्र है, मैं सत्संग में आया, और आपका भाव जगा कि सत्संग में जाना चाहिए। आप गाड़ी में आए, कार में आए, मोटर में आए, पैदल आए, और जितने पैर आपका यहां आया है घर से और यहां सत्संग सुनने के लिए आए, तो आपको उतना अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। देखो ये कहा जाता है, उतना अश्वमेध। अश्वमेध यज्ञ वो लोग करते थे जो बड़े बड़े राजा होते थे, घोड़े छोड़ते थे, और घोड़े आपने छोड़ा और पाकिस्तान में चला गया तो क्या करोगे आप, हैं? कुछ करेंगे? अमेरिका में चला गया तो क्या करोगे, हैं? अब कोई नहीं, चाहे मोदी हो चाहे कोई भी हो, क्या करे। अब यहां पर जो है ना घोड़ा आपको छोड़ना है, और घोड़ा चला गया इस समय अमेरिका में, रूस में या चीन में, तो बड़ा भयंकर परिश्रम करना पड़ेगा। तो पहले पहले अश्वमेध यज्ञ और राजस्वीय यज्ञ का अधिकारी सब लोग नहीं होते थे। अश्वमेध यज्ञ सिर्फ क्षत्रिय जाति ही करता है, राठौड़ है, राजपूत है, ये जो सरदार लोग हैं ये सब खेत्री के अंतर्गत आते हैं। गुजरात में पटेल समुदाय को भी खेत्री लिया जाता है। ये खेत्री में थे पटेल गुजरात में, लेकिन वो पटेल के स्थान पर वैश्य हो गए, ज्यादा व्यापारी करने लगे, लेकिन पटेल समुदाय में गुजरातियों को भी लिया जाता है, गुजरात में जो पटेल हैं। और इसमें जो क्षेत्रीय लोग थे वो जब राजसूय यज्ञ करते थे तो घोड़े को छोड़ते थे, जैसे राम जी घोड़े को छोड़ा, जैसे राजा युधिष्ठिर अर्जुन के साथ कृष्ण गए थे और घोड़ा जाता था। तो राजसूय यज्ञ में और अश्वमेध यज्ञ में ये है कि जो पूर्ण सम्राट होता था, धनबल बाहुबल जिसके पास होते थे, वो कभी जो है ना अश्वमेध यज्ञ करते थे। अब कलियुग में आपको अश्वमेध यज्ञ करना है तो भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत के आदि पर्व में लिखा है कि आपको अश्वमेध यज्ञ करना है तो कैसे करोगे। तो कहते हैं एकस्य कृष्णः कृत प्रणामो, ऐसे कहा गया। एक बार यदि कृष्ण को राम को आप प्रणाम करते हैं तो आपको अश्वमेध यज्ञ मिल गया। आपको करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल भगवान नाम के उच्चारण और श्रवण मात्र से मिला। राजा युधिष्ठिर दिल्ली में हस्तिनापुर में राजसूय यज्ञ कर रहे हैं और विधान ये है कि यज्ञ की समाप्ति होने पर बारिश होना चाहिए, विधान ये है कि शंख बजना चाहिए, घंट को भी अपने आप बजना चाहिए। उस समय की कथा है, शंख घंट अपने आप बजता था उस समय। तो जिस समय यज्ञ में स्वाहा करने जा रहे हैं तो न शंख बजा, न घंट बजा, न घड़ियाल बजा। युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि कन्हैया जी ये बोलो आप, यहां शंख घंट कुछ बजा नहीं, क्या बात है, क्या हो गया। तो भगवान ने कहा कि हमारे जीवन में आप लोगों में से कोई न कोई महापुरुष का अपराध हम लोग किया है जिसके चलते हो नहीं पा रहा है, वो संत को ढूंढो आप। हमारे जीवन में बहुत बड़ा अपराध हुआ है। तो जमुना जी के तट पर जब घूमने के लिए गए तो एक महादेव मंदिर में एक बहुत बड़ा जोगी बैठा हुआ है जमुना जी के तट पर। राजा युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज आप चलो। तो बोले देखो युधिष्ठिर, मैं कई दिन से भोजन नहीं किया, तुम यज्ञ कर रहे हो और यज्ञ के अधिष्ठात्री जो देवता है वो यज्ञ पुरुष है, भगवान विष्णु है, और विष्णु की सेवा यह है कि यज्ञ में प्रसादी होना चाहिए, भोजन व्यवस्था होनी चाहिए, प्रसादी होना चाहिए, और मुझे भोजन नहीं मिला है। तो बोले महाराज क्षमा करना, भोजन आपको देंगे, आप यज्ञ में चलें। और ऋषि बालक ने कहा कि ऐसे करो आप मुझे हजार राजस्वय यज्ञ का फल दो, हजार राजस्वय यज्ञ का। युधिष्ठिर भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा कि देखो ऐसे है, अभी एक यज्ञ नहीं हुआ है, अभी एक तो नहीं हुआ है, और हम आपको हजार कहां दें। तो द्रौपदी जी सामने खड़ी थी। द्रौपदी जी ने कहा कि मैंने महाराज सुना है शास्त्रों से, पुराणों से, ऋषियों से कि संत दर्शन को जब साधक जाता है, व्यक्ति जाता है, और जितना पैर चल करके कदम रख करके जाता है, जितना वो चलता है, और उसके पैर जितने होते हैं, जितने पैर में वो भूमि में पैर रख करके जाता है, उतना उसको जो है ना राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। हम लोग दिल्ली से आते आते जो है ना कई हजार कदम हमको लगा है इसमें, यहीं जो आए, और आपसे प्रार्थना है कि आप एक हजार कदम का जो फल है ना वो ले लेना। संत दर्शको जाइए तजी माया अभिमान, ज्यो ज्यो आगे पग धरे कोटिन यज्ञ समान। इसलिए संत दर्शन को कोई जावे, सत्संग में जावे, माया और अभिमान को छोड़ करके भाव से जब जाता है तो उसको उतना फल मिलता है। चाहे वो मोटर गाड़ी में आवे, चाहे कार में आवे, चाहे पैदल आवे, जितने आपके पैर, जितने आपके चरण इस भूमंडल में पड़े हैं, नित्य सत्संग से आने के पहले उतना यज्ञ का फल आपको मिलता है। और उस यज्ञ का फल जो है ना, आप डेली प्राप्त करते हैं। ये देखो, इसलिए उन्होंने कहा कि अश्वमेध सहस्त्राणी, हजारों अश्वमेध आप किया, एकस्य कृष्णस्य हृदयः प्रणामो, एक बार भगवान को आपने प्रणाम कर दिया, कृष्ण राम कह दिया, शिव कह दिया, गुरुदेव को प्रणाम किया, तो आपको करोड़ों अश्वमेध और राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। ये देखो, इसलिए शास्त्र प्रमाण है, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर मिहार। ये शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र जो कहते हैं वो कभी जो है ना मिथ्या नहीं है, शास्त्र ही प्रमाण है। कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन मां के पास जा तो रहा है लेकिन निर्वस्त्र होकर के नहीं जाना चाहिए, और मृत्यु का बेला है, तो राजा दुर्योधन को सद्बुद्धि आई, क्योंकि इस समय मृत्यु का बेला है, उसको मृत्यु के मुख में जा रहा है। कृष्ण को कभी नहीं मानने वाला दुर्योधन, उसने जो है कुछ वस्त्र या केला जो भी हो अपने जंघा में ढका, और गांधारी के पास जब पहुंचा, और गांधारी जी ने अपने नेत्र खोल करके जब देखी तो सारे शरीर वज्र हो गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मैं तो कहा कि निर्वस्त्र होकर के आने के लिए, लेकिन तू कैसे पहन लिया ये? बोले कि माता जी, ये है ना, बगल में आ रहा था मैं सामने सामने, और रास्ते में जो है ना भगवान कृष्ण मिले, और कृष्ण ने कहा कि मां के पास जाना है तो कुछ पहन करके जाओ, ऐसे नहीं। गांधारी जी ने जो है ना भगवान को प्रणाम किया, हो ही सोई जो राम रुचि रख, को करी सक ही तर्क बढ़ावे साखा। जैसे प्रभु की इच्छा, संग सती जग जननी भवानी, भगवती कथा सुनने के लिए गई है ऋषि अगस्त के आश्रम में, कथा सुनने का फल राम जी का दर्शन हुआ है। दर्शन की महिमा ये है कि राम जी रो रहे हैं, लखन जी रो रहे हैं, सीता जी के वियोग में ये देवी दर्शन किया, लेकिन शंकर जी ने कहा कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वो मेरे इष्ट देव हैं। कथा सुनने का फल ये हो गया कि भगवान की कथा श्रवण किया तो भगवान का दर्शन हुआ। इसलिए कथा सुनने के बाद महादेव जो सभी के गुरु है वो कहते हैं कि कथा का फल राम जी का दर्शन हुआ, इसलिए संशय मत करो, संशय की निवृत्ति हो जाना, अविद्या का नाश हो जाना, ये भगवत कथा का फल है। इसलिए यहां पर भगवत कथा का ये जो फल है, लेकिन जब शंकर जी की बात को न मानते हुए देवी सीता बनकर के प्रकट हुई और राम जी के सामने जब खड़ी हो गई, तो राम जी ने ये नहीं कहा कि आप चामुंडा हैं, आप देवी हैं। उन्होंने कहां फिरई अकेली वृषकेतु, वृषकेतु को छोड़ करके कहां घूम रही है? जगदम्बा ने कहा बड़ी विचित्र, राम जी ने कहा वृष माने बैल, केतु माने बैठना, जो वृष पर आरूढ़ होता है ऐसे महादेव। बैल के कितने पैर होते हैं? चार। ये जो बैल है ये धर्म का प्रतीक है, और धर्म के कितने पैर होते हैं? चार, सत्य, यज्ञ, दान और तपस्या। सत्य भी होना चाहिए, यज्ञ भी होना चाहिए, दान भी होना चाहिए, तपस्या भी होनी चाहिए। चारों पैर को छोड़ करके कहां घूम रही है? ये देखो, भगवान शिव ने कहा कि तेरे पास चारों पैर नहीं है मां होकर के। सत्य, यज्ञ, दान और तपस्या, ये चारों के ऊपर जो बैठता है ना, उसको कहते हैं वृषकेतु, वही है शिव। इसलिए भगवान शंकर जो है ना, वृषकेतु है। तो राम जी ने संबोधन किया, बोले माताजी कहां फिरई अकेली वृषकेतु? वृषकेतु को छोड़ करके आप देवी कहां घूम रही है? तो लगा कि वास्तविक में जो है ना, ये जो भगवान है श्री राम जी, जिनकी कथा मैंने श्रवण किया, कथा सुनने का फल ये है कि सद्गुरु की आज्ञा को पालन करना, लेकिन उसने पालन नहीं किया देवी जी ने, इसलिए भगवान ने संबोधन किया कि वृषकेतु को छोड़ करके। इसी प्रकार से यहां पर राजा दुर्योधन मां की आज्ञा को पालन करता है। देखिए, कृष्ण की आज्ञा को कभी पालन नहीं किया उसने, लेकिन मृत्यु का समय जब आया तो कृष्ण की आज्ञा को माना उसने। जिस समय मृत्यु का समय आया ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति तेजन देह स्वयाति परमाम गति। मृत्यु का समय जब आया तो राजा दुर्योधन ने कृष्ण की वाणी को उसने सम्मान किया, माना। कभी मानने वाला नहीं था, न माना था, लेकिन आज माना। और जिस समय भीम के साथ युद्ध हुआ तो भगवान ने, जब दुर्योधन मरणासन्न में आया तो कृष्ण भगवान ने दर्शन दिया। दुर्योधन ने कहा महाराज आपका दर्शन हुआ। बोले मां की आज्ञा को तूने माना? जीवन में मां की आज्ञा को नहीं माना, लेकिन अंतिम समय में मां को माना। और मां को मानने का फल क्या हुआ? भगवान की आज्ञा को माना। और भगवान की आज्ञा को मानने का फल ये हुआ कि मृत्यु के समय में ईश्वर का दर्शन हुआ। इसलिए ये गीताकार का ये सिद्धांत है, मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी बिनहि विचार करिय शुभ जानी। माता पिता गुरु वेद जो बोलते हैं उसमें विचार मत करो। आप रात्रो दधि न भुंजे, आज रात में दही न खावे, ये शास्त्र कहते हैं। लेकिन आप रात में ही विवाह में गए हैं, दही बड़ा बना हुआ है, तो क्या करोगे? एक महात्मा अहमदाबाद में कर्णावती क्लब में गए, बोले यहां तो दही बड़ा बहुत बड़ा बना है। वो कहता रात्रो तक्रम न भूंजिए, आज भाई रात में तक्र नहीं खाना चाहिए। तो एक ने कहा कि आप बोलते जाओ लेकिन दही बड़ा तो खा लो कम से कम, आप बोलो तो बोलो सही, लेकिन दही बड़ा जब बना है तो नहीं खाना चाहिए, शास्त्र कहता है। खाने से बुद्धि जो है ना मंद हो जाता है, स्मरण शक्ति का अभाव हो जाता है, लेकिन जब वेद कहता है तो उसको मानना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण इस बात को बड़े अद्भुत भाव से उठाते हैं, यथा काश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि तु पधारयः। यथा आकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महा तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि इति उपधारय। भगवान कृष्ण इस बात को सिद्ध करते हैं कि वेदांत में ईश्वर को असंग कहा गया है, और गीता जी के वक्ता भी इस बात को सिद्ध करते हैं कि कृष्ण भगवान के 16108 रानियां हैं, साथ में गोपियों के साथ रहने वाले हैं। गोपिकाओं ने पूछा कि महाराज आपके गुरु कितने हैं? ये कृष्ण के बहुत से गुरु थे, एक गुरु इनके थे दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण के, एक गुरु थे गर्गाचार्य जिन्होंने नामकरण किया, और भगवान श्री कृष्ण के कई ऐसे गुरु हैं जिसमें नारद जी को भी गुरु मानते थे वो। लेकिन सबसे बड़ा प्रभावी गुरु और बड़े तपस्वी महापुरुष थे ये भगवान दुर्वासा, दुर्वा आस्ते इति दुर्वासा। जो दूध का रस होता है उसको आप पीसें, पीस करके एक चम्मच रस बनावें और उस दूध के रस को एक चम्मच पान करें। स्वामी हरिहरानंद जी जो करपात्री महाराज जी थे ना, वो ऐसे करते हाथ में रोटी एक ठो आवे, सब्जी आवे, लौकी आवे, परवल आवे, जो भी आए ना हाथ में लेते थे और खाते थे, बस वो इतना ही। और पानी थोड़ा पीते थे कमंडल में, तो तब से लोगों ने कहा कि आपका नाम करपात्री जी है। स्वर्गाश्रम में हम लोग देखते थे, राम सुखदास जी महाराज जी के पास जाते थे कभी कभी कैलाश से, तो महाराज जी का नियम था कि पांच घरों में भिक्षा लेते थे स्वामी राम सुखदास जी। अरबपति मारवाड़ी लोग, करोड़पति लोग, तो सूखी रोटी थोड़ा लेते थे, परवल की सब्जी लेते थे, थोड़ा लौकी दूधी लेते थे, और थोड़े सब्जी लेते थे तो स्वामी जी को देने के लिए जो है ना सब लोग खड़े रहते थे, बस महाराज जी आते थे, और पांच रोटी और थोड़ा सब्जी सभी के यहां। स्वामी जो है ना दो रोटी लेते थे और थोड़े सब्जी लेते थे, लेकिन प्रसाद के रूप में हजार लोग खड़े रहते थे कि महाराज जी का थोड़ा मिल जावे। स्वामी राम सुखदास जी के बात में बता, स्वर्गाश्रम में गर्मी के दिन में जब प्रवचन करते थे तो उसमें वो लिख देते थे कि मुझे कोई संसार की चर्चा नहीं होनी चाहिए। एक जगह पर मुरारी बापू की राम कथा हुई, उसमें हम लोग भी थे, बहुत संत थे, तो राम कथा जब वो करते हैं बापू जी जो है ना, लोग चिट्ठी लिखते हैं, प्रश्न लिखते हैं कि ये बापू ये कैसे है, वो कैसे है, तो कहां की एक लड़की थी, उसने चिट्ठी लिखा कि आपके कथा में मैं आई हूं, सब लोग जब नाचते हैं तो मैं भी नाचती हूं, हरे कृष्ण कीर्तन करते थे ना श्री राम जय राम, तो बापूजी टेलीविजन में मेरे फोटो क्यों नहीं आई ये आप बताइए। उसने ये कहा, वो संस्कार चैनल में आस्था में, बोले ये फोटो क्यों नहीं आई। तो मुरारी बापू ने कहा, तुम कथा सुनने आए हो कि फोटो खिंचवाने के लिए आए हो, कथा आपको सुननी है तो कथा श्रवण करो, टीवी में आपका फोटो आवे, आपके घर वाले देखे और लोगों को पता चले कि ये बहुत अच्छा कीर्तन हो रहा है, नाच रही है, इस लोकेशना को छोड़ दो और राम कथा का श्रवण करो। इसलिए राम कथा के विषय में ऐसे दो पात्र की वर्णना है जहां पर भुसुंडी भी कौवा है, गरुड़ जी भी पक्षी हैं, दोनों एक जात के हैं, और कथा सुनने वाले कौए हैं और पक्षी है। गरुड़ को संशय हुआ तो भुसुंडी जी के यहां गए और उसने कथा श्रवण किया। इसी प्रकार से अर्जुन को संशय हुआ तो किसी के पास नहीं गए, भगवान श्री कृष्ण जो सारथी है ना उनके पास बैठे और बैठ करके कहा, विसृजम ससरम चापम शोक संविघ्न मानस, मैं धनुष बाण को छोड़ देता हूं और बिल्कुल कुटस्थ होकर के मौनी होकर के बैठे और भगवान से कहा कि महाराज कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, ये देखो, पृच्छामि त्वं धर्म सम्बूढचेत यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहितन मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वं प्रपन्नम्, मैं अपने दोष से ग्रस्त हूं। ये सबसे बड़ी साधना है, अपने दोष को देख लेना जो है ना सबसे बड़ी साधना है। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, मेरे मन में जो कार्पण्य दोष है, जो कंजूस भाव है, जो कदर्ज भाव है, इससे क्या है, मेरा चित्त वृत्ति जो है ना अपहृत हो गया है, मेरे चित्त में जो ज्ञान है वो चला गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस बात को उठाते हैं, यथा आकाश स्थितो नित्यम, आकाश जो है अपने स्थान पर स्थित है। वेदांत में आकाश को पंच महाभूत कहा गया है, तस्माद् वा ये तस्माद् आकाश संभूतः, ये तस्माद् वा ये तस्माद् आकाश संभूतः तैत्तिरीय उपनिषद में आया। उस ब्रह्म से आकाश आया, आकाश से वायु, वायु से जल, जल से अग्नि, अग्नि से ये पृथ्वी, ऐसे जो है ना अपंचीकृत पंची महाभूत का जन्म हुआ। ये वेदांत में जो है ना ये श्रवण किया गया है, लेकिन यहां आकाश को जो है ना एक भूत कहते हैं, पंच महाभूत। व्याकरण वाले आकाश को ये कहते हैं कि अवकाशम ददाति इति आकाश, ये जितने पोल है ना ये सब आकाश है, ये जितने हैं सब, ये जहां भी आप बैठे हैं सब आकाश है, ये सिर है, ये है, ये जितने भी खालीपना है ये आकाश है। अवकाशम ददाति आकाश, आकाश का लक्षण ये है, जो अवकाश दे वो आकाश है। यथा आकाश स्थितो, आकाश में एक वायु है। वायु शब्द का ये विषय आया है कि वायु 49 है, पुराणों के अनुसार कश्यप और अदिति का जो बेटा है ना वो वायु है, कश्यप ऋषि और अदिति इनके जो पुत्र हैं वो वायु देवता है। वायु को मारने के लिए जब इंद्र आए तो 49 खंड किया, 49 इतना किया उसने, 49 और 49 प्रकार के वायु है, ये भी सही है, लेकिन आपके पास कितने वायु हैं, 5, प्राण अपान समान उदान व्यान, जो नासिका में है, जो हृदय में है, जो गुहा मलमूत्र द्वार में है। इसलिए जो है ना उसके कर्म के अनुसार वायु का नाम 5 है। गीता जी में भगवान ने कहा है, प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिण, प्राण और अपान को समान करे, अपान जुहति प्राणम प्राणे पानम तथा परे। कुछ लोग जो है ना रेचक पूरक और कुंभक के द्वारा अपान को लेकर के प्राण में देते हैं, और प्राणे पान तथा परे कुछ लोग प्राण वायु को लेकर के अपान में जोड़ते हैं। इसका मतलब क्या है, एक बहुत बड़े महापुरुष थे, उसने तोतापुरी महाराज जी का दर्शन किया, तोतापुरी जी का, तोतापुरी वो थे, यहां नहीं घूमते थे, इधर नहीं आए, अभी बम्बई दिल्ली नहीं आए, तोतापुरी जो स्वामी जी थे वो कम से कम जो है ना आपके ये जो छत है ना इससे भी बड़ा लंबा चौड़ा थे वो स्वामी जी। वो घूमते थे बलिया तरफ, गंगा जी के किनारा है बलिया। जब मां ने कहा कि देखो परमहंस, थोड़ा वेदांत पढ़ने के लिए जाओ, तो परमहंस जी ने कहा कि मां ये बोलो, आपको छोड़कर के कोई संसार में है, आपसे कोई अलग है? तो परमहंस जी को देख करके काली जी ने कहा कि देखो मेरी आज्ञा है, थोड़ा वेदांत पढ़ो। बोले वेदांत कौन पढ़ावे? बोले बलिया के गंगा किनारे तोतापुरी है, उनके पास जाओ। ये तोतापुरी के पास आए, और तोतापुरी को ज्ञान हो गया कि ये परमहंस जी को माता जी ने भेजा है। तो बोले कि ठीक है, आपको मैं वेदांत पढ़ाऊं, वेदांत के पढ़ने के पहले पहले तुम्हारे मन में संशय क्या है थोड़ा बोलो। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे मन में एक भाव है, सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्वित भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। मेरे मन में तो यह है कि सब कुछ वही है, सब कुछ ब्रह्म है, सर्व खलु इदम ब्रह्म निह नानास्ति किंजन, उसे छोड़कर के कुछ नहीं है। लेकिन इस बात को पूर्ण निष्ठा के साथ आपके हृदय में तब तक नहीं बैठेगा जब तक आप अधिकारी नहीं होंगे। सट संपत्ति से युक्त होकर के जब अधिकारी बनेंगे, क्योंकि आदि शंकराचार्य को एक कुर्सी मिला, बहुत बड़ा कुर्सी था, और जब कुर्सी में बैठे तो उन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसे कहा, जीवो ब्रह्मे वना पर, ब्रह्म ही सत्य है जगत मिथ्या है, ऐसे क्यों कहा? वो सट संपत्ति नाम की जो कुर्सी है ना, उसके ऊपर बैठे, जब बैठे तो उसने जो है ये संसार है ही नहीं, तीनों कालों में जब संसार ही नहीं है तो संसार सत्य है संसार मिथ्या है उसका कोई मतलब ही नहीं है। संसार सत्य है संसार मिथ्या है उसका मतलब नहीं है। तो तोतापुरी महाराज जी जो है ना, जो वेदांत के ज्ञान जो परमहंस जी को दिया, तो उनका एक दर्शन एक साधु ने किया था, एक महात्मा जी दर्शन किए थे, तो राजगृह में कैलाश आश्रम में एक कार्यक्रम में हम लोग गए मलमास में, पुरुषोत्तम मास में, तो स्वामी जी को मंडलेश्वर जी स्वामी विद्यानंद जी महाराज बहुत मानते थे, तो उनको ले गए, तो उनको क्या था कि गर्मी के दिन में गर्मी नहीं लगती थी, ठंडी के दिन में ठंडी नहीं लगती थी। इसका मतलब ये वो जो साधु थे ना, जो महात्मा जी थे, अपने मां को छोड़कर के किसी को देखा ही नहीं था उसने, वो हमेशा सिर को नीचे करते थे, मां को ही प्रणाम किया, किसी दूसरे स्त्री को पर पुरुष को तो देखा ही नहीं कभी। इतना बड़ा अखंड ब्रह्मचर्य था स्वामी जी का कि उनको जो है ना इंद्रियों के ऊपर काबू था, 100 साल की अवस्था में भी ईशावास्य उपनिषद का पाठ, 10 शांति मंत्र पढ़ना, और उस समय के वो कोठारी थे कैलाश के, विष्णु देवानंद गिरी जी जो थे ना उनके उस समय कोठारी थे, मुरारी बाबू के दादा के समय की बात, बहुत बड़े तपस्वी संत थे। यम ही न व्यथयंती थे पुरुषम पुरुषार्थ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, जिस समय साधक को इंद्रियां जो है ना दुख नहीं देती, भूख भी लगे तो थोड़ा, निद्रा भी आवे तो थोड़ा, न ठंडी लगे न गर्मी लगे न वर्षा लगे, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं उनको नहीं लगता। तो स्वामी जी को जब ले गए ना, तो उनको लोगों ने पूछा कि महाराज साधना बताओ कुछ है, प्राणापान तथा परे प्राणायाम गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। बहुत बड़ा मेला था, जैनी लोग थे वहां, तो स्वामी जी ने कहा कि देखो साधना तो यही है कि घर में दाल बनता है कि नहीं बनता है, बोले बनता है, दाल में थोड़ा करेला दे करके उसको बनाओ, वो महाराज जी का अभिप्राय देखो, दाल में करेला डाल दें और उसको जो है ना दाल में उबाल दें और उसी को खावे, और थोड़ा दूधी की सब्जी बनाओ लौकी का, उसमें मिर्चा मसाला डाले ही नहीं थोड़े ही दे। तो लोगों ने कहा कि ये कोई उपासना तो है नहीं, ये प्राण उपासना तो नहीं है। तो महाराज ने कहा कि सबसे बड़ी उपासना यही है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, इसका ज्ञान आपको रामचरितमानस में है। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, करनित करही राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं दूजा। भगवान को भोग लगा करके प्रसाद के रूप में भोजन लेना चाहिए, प्रसाद के रूप में। तो दुकान की चाय पियेंगे आप, वहां कोई भोग लगता है, सब चप्पल जूता में बनाता है लोग, आप बाहर चले गए तो इडली डोसा खाएंगे नहीं खाएंगे, गोलगप्पा खाएंगे नहीं खाएंगे, आप कोई भी बाहर के वस्तु को खा नहीं सकते, क्योंकि जो भोग नहीं लगता वो प्रसाद नहीं है। तुम ही निवेदित भोजन करही, आपको दे करके प्रसाद के रूप में देता है। इतना बड़ा नियम जो है ना रामचरितमानस में कहा कि बिना आपको दिए कोई चीज नहीं लेता, इसका मतलब आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि, और आहार की अशुद्धि एक गिलास पानी में हो जाता है। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं मांस खा सकता हूं, उड़द की दाल खा सकता हूं, लेकिन मोची भाई तुम्हारे पानी नहीं पीता, जिसमें 12 वर्षों तक बारिश नहीं हुआ और विश्वामित्र जा रहे थे, एक चमार के घर में मांस था, सुखाया था, उड़द की दाल थे, तो राजा विश्वामित्र जो ऋषि थे ना, उन्होंने खाया, और जैसे खाया तो उसने कहा जब खाते हो तो पानी भी पी लो, बोले पानी नहीं पिएंगे, पानी पीने से हमारा धर्म चला जाएगा, भ्रष्ट हो जाएंगे। बोले क्यों, यदि इसको भोजन नहीं करेंगे तो हमारा मृत्यु हो जाएगा, प्राण चला जाएगा, पानी तो मिलेगा। इसलिए यहां पर आहार शुद्धो सप्त शुद्धि, आहार की शुद्धिकरण के साथ मन की जो है इंद्रियों की अंतःकरण की शुद्धि है। सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति छांदोग्य उपनिषद में आया। श्री कृष्ण भगवान इस बात को उठाते हैं जैसे आकाश है, यथाकाश स्थितो नित्यम, आकाश जो है नित्य स्थित है, लेकिन आकाश के साथ साथ वायु भी है। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि श्री कृष्ण के गुरु है दुर्वासा जी, दुर्वासा जी गोवर्धन में चतुर्मास कर रहे थे, गिरिराज गोवर्धन में चातुर्मास जब कर रहे थे तो दुर्वासा जी के यहां मिलने के लिए गोपिकाएं गए। गोपियों ने कहा कि जा तो रहे हैं लेकिन खीर दही मालपुआ ये सब लेकर के गोकुल का गए, और सामने जब जमुना जी को देखा तो उन्होंने कहा कि सूर्य पुत्री एक काम करो, रास्ता तो दे दो हम चलें। तो जमुना जी ने कहा कि ऐसे है ना, कृष्ण को पूछ करके आओ पहले, तो मेरा पति है, वो यदि आज्ञा नहीं करेंगे तो हम रास्ते देने वाले नहीं है। तो भगवान को पूछा गोपिकाओं ने, तो भगवान ने कहा कि देखो ऐसे है, जाकर के बोल दो कि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है, रास्ता दो। गए, बोले कि महाराज जमुना जी माता जी ऐसे है, वो बाल ब्रह्मचारी हैं, तुम्हारे पति भी हैं और बाल ब्रह्मचारी भी हैं, रास्ता दे दिया। फिर वो आए गोपिकाओं दुर्वासा जी से मिल करके प्रणाम करके, दुर्वासा जी ने जितना मलाई जितने मालपुआ जितना रसगुल्ले जो भी दिए थे खूब लगाया, खूब खाया। दुर्वासा जी को कहे कि जमुना जी बड़ी है कैसे करें, तो उन्होंने कहा कि देखो दुर्वासा कुछ खाता पीता नहीं है, निराहारी दुर्वासा, पानी नहीं पीता। तो गोपिकाओं ने कहा कि इसके जैसे मिथ्या आदमी झूठ बोलने वाले नहीं है, और कन्हैया तो ऐसे भी झूठा है। तो गए, जमुना जी पार हो गए तो कृष्ण भगवान के पास बैठ करके गोपिकाओं ने कहा कि महाराज ये बोलो कि 16,108 रानियां हैं और आप ब्रह्मचारी हैं, और आपके सदगुरु सब खा करके कुछ खाते नहीं हैं, निराहारी हैं, ऐसे मिथ्या भाषण आप लोग करते हैं तो कैसे चले। भगवान ने कहा कि देखो भाई, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, आकाश में स्थित जो है ना वायु है, आकाश भी बहुत बड़ा है और वायु भी बहुत बड़ा है, वायु भी महान है और आकाश भी महान है, सर्वत्र गो महान, सर्वत्रम गच्छति इति सर्वत्र ग, जो महान है वो सर्वव्यापक है, सभी जगह पर है, लेकिन आकाश के साथ वायु का कोई संबंध नहीं है। कृष्ण भगवान बड़े गृहस्थी होकर के गोपियों के साथ रहकर 16108 रानियों के साथ रह करके भी वो ब्रह्मचारी इसलिए है कि न माम कर्माणि लिपन्ति न मे कर्म फले स्प्रिहा इति माम यो भी जानाति कर्म भीर्ण सवध्यते। गीता जी में एवं ज्ञात्वा कृतकर्मं पूर्वेरपि मुमुक्षवि कुरु कर्मेव तस्मात्त्वं पूर्वेः पूर्वतर कृतम्। कर्म जो है ना लिपायमान नहीं करते, नमाम कर्माणि लिपन्ति, कर्म जो है मुझे लिपायमान नहीं करते। क्यों नहीं करते? कर्म के फल की इच्छा में नहीं करता। कर्म आपको क्या देते हैं? सुख और दुख। कर्म आपको क्या देते हैं? स्वर्ग, ब्रह्मलोक, नरक आदि। आप जब कर्म फल की इच्छा नहीं करेंगे तो कर्म करने पर भी कर्म में बंधन नहीं होगा। ये रोड में जो है ना लोग मक्का ही खाते हैं, देखते हैं समुद्र किनारे, और जब मक्काई को भूंज देते हैं आग में और खाते हैं तो खेत में काम नहीं होता, नहीं उगता वो मक्काई। बड़ा अच्छा है, बड़े बड़े होते हैं, उसको हम लोग भुट्टा बोलते हैं खेतों में, देहात में होता है। लेकिन उसको आग में लगा करके खाओ और खेत में यदि लगाओगे तो काम नहीं करेगा, उगेगा नहीं। आग में नहीं लगा करके यदि खाएंगे और वो बीज को यदि लगाएंगे तो खेतों में हो जाएगा। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं जो विषय है, जो मन है, जो बुद्धि है, जो इंद्रियां है, ये ईश्वर ने दिया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वार पाई जे ही पर लोकन सवारा। साधन का ये धाम है, मोक्ष का दरवाजा है, ईश्वर ने दिया है। लेकिन इसको सत्संग और ज्ञान रूपी आग में जो है ना, इसको जब आप लगा देंगे, जला देंगे, तो ये रहने पर भी ये शरीर रूपी खेत में उगेगा नहीं। जो कर्म है, कर्म जो है ना, कर्म में फल की आसक्ति नहीं है। आप जो भी कर्म करते हैं, आपके पास कितने कर्म है? 5। विधि कर्म, निषेध कर्म, प्रायश्चित कर्म, निमित्त कर्म और जो है शास्त्रों में नित्य कर्म, 5। नित्य कर्म क्या है? सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करें, ये नित्य कर्म है। सुबह उठ करके संध्या की उपासना करें, सुबह शाम सूर्य भगवान को प्रणाम करें, गुरु गोविंद को रोज वंदन करें, ये नित्य कर्म है। यदि नित्य कर्म नहीं करते हैं तो प्रत्यवाय नाम के दोष लगता है, ऐसे कहा गया है। नित्य कर्म करना चाहिए। एक है नैमित्तिक कर्म, आज एकादशी है, कल द्वादशी है, परसों संक्रांति है, परसों ये है, आज बर्थडे है, आज जन्मदिन है। और ऋषिकेश में तो एक ने कहा कि हमारा 50 साल हो गया, हम लोग का जो है ना आज भंडारा कराइए पति पत्नी का। तो स्वामी जी ने पूछा कि क्यों भंडारा कर रहे हो? बोले दोनों कभी शांति में नहीं रहे, इसी उपलक्ष्य में एक भंडारा। ये देखो उसकी भंडारा, धनी आदमी है। तो कभी कभी पति पत्नी का कई वर्ष हो जाता है तो उसका एक निमित्त होता है, कभी बर्थडे होता है, कभी कुछ होता है, तो एक निमित्त है, माता पिता चले गए। एक होता है प्रायश्चित कर्म, भूल बस कोई प्रमाद हो जावे तो उसके लिए एक प्रायश्चित जो शास्त्रों में विधान है। एक कर्म विधि कर्म है जो शास्त्र में बताया है। ये जो विधि कर्म है ये भी फल देते हैं, निषेध कर्म भी फल देते हैं। आप विधि कर्म करने पर भी समर्पण भाव से भगवत अर्पण करते हैं तो उसका कोई फल नहीं होगा, और निषेध आप करते नहीं है, शास्त्र विरुद्ध करते नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा भीष्म जी ने कि मेरी इच्छा है कि इच्छा मृत्यु वरदान है, लेकिन मां गंगा बोलो मैं क्या करूं। तो माता गंगा जी ने कहा कि देखो एक काम करोगे? बोले बोलो। सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत, दोनों सेना के बीच में भगवान खड़े हैं। और भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए खड़े हैं, आप प्रसन्न मुद्रा में हैं, तो भीष्म ऐसे करना, ततः श्वेते हयर युक्ते महति संदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यम संघमो प्रदम ददो। भगवान खड़े हैं और खड़े हुए भगवान को दर्शन करते हुए बापट पित की पहरान कर धरी चक्र चरण की धावनी नहीं बिशरत वह बान बापट पित की पहरान। ये सूरदास जी का है। जिस समय वो भगवान चक्र लेकर के आ रहे हैं रथ चक्र और पीताम्बर इधर उधर उड़ रहा है, वो दृश्य जब भीष्म जी ने देखा तो मां गंगा को याद किया। गंगा जी ने कहा था कि ये दृश्य देखते देखते अपने शरीर को छोड़ना। ये देखो, इसलिए कभी कभी शास्त्रों में इस बात को बताया कि विधि कर्म आपके पास नहीं है, निषेध कर्म आपके पास नहीं होगा। जिस समय सारा कर्म कर्म के फल को आप भगवान के सामने रख देंगे, ईश्वर के चरणारविंद में रख देंगे, इसलिए गीताकार का कहना है नमाम कर्माणि लिपन्ति नमे कर्म फले स्प्रिहा। कर्म में बंधन इसलिए नहीं है कि कर्म फल को मैं चाहता नहीं, इसलिए दुर्वासा सब खा करके भी निराहारी हैं और कृष्ण बड़े गृहस्थी होकर के भी अखंड ब्रह्मचारी हैं, योगेश्वर हैं। इसी को भगवान ने कहा यथा काश स्थितो नित्यम वायुः सर्वत्र गो महान। आकाश में वायु है, सर्वत्र है, लेकिन असंग है। तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानित्युपधारय। ऐसे में संपूर्ण ब्रह्मांड में हूं, मुझे परमेश्वर में सारा संसार है, मस्तानि मेरे में है, इति उपधारय। ऐसे निश्चय करो, उपधारय माने दृढ़ निश्चय, उपधारय का अर्थ है कि दृढ़ निश्चय करो कि सर्वाणि भूतानि मस्तानि मेरे में संपूर्ण जगत है, लेकिन होने पर भी मैं असंग हूं, निर्लिप्त हूं। ये शास्त्रों में ही बताया, इसका मतलब कि ब्रह्म जो है ना वो व्यापक है। व्यापक होने पर भी जैसे आपको घट का ज्ञान हुआ और घड़ा को आपने देखा तो कम्बु ग्रीवादिमत्वम घटत्वम, ये जो घड़ा है कम्बु ग्रीवा वाला है, लेकिन घट का जो अज्ञान है ना, जब घट का ज्ञान हो गया कि गोल मटोल वाला घड़ा है, तो घट ज्ञान के साथ अज्ञान का भी नाश हो जाएगा। ज्ञान और अज्ञान दोनों जब नहीं रहेंगे, उस समय जो विशुद्ध एक ज्ञान होगा वो परमात्मा का ज्ञान है। जिस समय साधक ज्ञानी होता है, नदियां समुद्र में जाती है तो नदियां नाम रूप को भूल जाती है। ऐसे आप जिस समय ब्राह्मी भाव को प्राप्त करेंगे, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। स्थिति प्रज्ञ में बताया, ब्राह्मी भाव को जब प्राप्त करेंगे ना तो मेरा तेरा भाव चला जाएगा ना, ये है मेरा ये है तेरा, ये भाव नहीं रहेगा। जब मेरा तेरा अहम मम नहीं रहेगा तो आप क्या हो जाएंगे, असंग हो जाएंगे। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। गोस्वामी जी ने इसी को उठाया, अधिकारी ही जानता है कि आप सड़ विकार से रहित हैं, चैतन्य स्वरूप में हैं। इस बात को गीताकार ने कहा यथा काश स्थितो नित्यम, आकाश अपने स्थान पर है, वायु अपने स्थान पर है, सर्वव्यापक मैं इसी प्रकार से हूं। सर्वव्यापक होने पर भी फिर भी वेदांत में कहा है ईश्वर यदि सर्वव्यापक है तो कभी कभी वो भक्ति के आवेश में, भक्ति भाव में वो सगुण ब्रह्म बन करके आता है, वो सर्वव्यापक है, वो कहीं दूर नहीं है। तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानित्युपधार, ऐसे यहां पर भगवान ने कहा है। श्री राम जय जय राम श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।